रॉयल ऑफिस। आस्तिक अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन वो काफी परेशान था। कल रात उसने जैसा व्यवहार अरुणिमा के साथ किया था, उसके बाद से ही वो खुद को दोषी महसूस कर रहा था। आस्तिक अपने एक हाथ से अपने सर को मसलते हुए कहता है, ये क्या था? क्या बन गया था मैं कल रात? वो मैं नहीं था, वो कोई मॉन्स्टर था जो मेरे अंदर हावी हो गया था। मैंने कल रात लगभग उसे मार ही दिया था। वो 3 बार बेहोश हुई थी, मेरी आंखों के सामने तड़प रही थी, लेकिन फिर भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके लिए इतना क्रूर कैसे हो गया? क्या ये मेरी गलती थी? आस्तिक को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसके अंदर एक गिल्ट की भावना जाग रही थी। सुबह जब आस्तिक उठा तो अरुणिमा लगभग उसे अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी मिली, बिना कपड़ों के, सिर्फ सांस ही लेती हुई जिंदा लाश की तरह। आस्तिक अरुणिमा को इस हालत में देख नहीं पाया। उसने पहले भी अरुणिमा के साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन तब कम से कम अरुणिमा इस हालत में तो थी कि उठकर चल सकती थी। लेकिन कल रात तो उसकी ऐसी दुर्दशा हुई थी कि आज आस्तिक खुद उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसीलिए किसी के उठने से पहले ही आस्तिक महल से निकलकर रॉयल ऑफिस आ गया था। वो परेशानी से अपने केबिन में बैठा हुआ, अपनी ही आत्मग्लानि से घिरा हुआ था और खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैंने गलत किया है? तभी आस्तिक के मॉन्स्टर मन ने उससे कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने अमृता ताई को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। तूने उसके साथ कभी गलत नहीं किया है, बल्कि गलत तो तेरे साथ हुआ है। उसके बदले उसे जो भी सजा मिल रही है वो बहुत कम है। जरा सोच तुझे क्या क्या सजा मिल रही थी, जरा सोच तेरी बहनों ने भी तो ये सब दिन देखे हैं। आज जब तू उसे तड़पता हुआ देख रहा है तो तुझे अफसोस हो रहा है। उस दिन कहाँ था तेरा अफसोस, जब तेरी खुद की बहनें अपनी जान की भीख मांग रही थीं। अचानक से ये सारी बातें याद आते ही आस्तिक का मन फिर से गुस्से से भर गया और उसके चेहरे पर गुस्सा पसरने लगा। उसने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा। सामने आस्तिक का असिस्टेंट खड़ा था। आस्तिक के इस व्यवहार से वो डरकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, राजा साहब, कोई परेशानी है क्या? आस्तिक अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? आस्तिक के असिस्टेंट ने कहा, आप ही ने बुलाया था, आपको प्रेस की ओरिजिनल पेपर चाहिए थे ना, उसके लिए ही तो आपने मुझे यहां बुलाया था। ये रहे पेपर्स। शारदा जी के प्रेस के ओरिजिनल पेपर्स आस्तिक के पास थे और ये देखकर उसके चेहरे की स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। उसने उस पेपर्स को लिया और ड्रॉअर में रखते हुए कहा कि पेपर नहीं है बल्कि सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है। असिस्टेंट ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं राजा साहब, आप क्या कह रहे हैं? आस्तिक अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। तभी आस्तिक के दरवाजे पर दस्तक होती है। आस्तिक अंदर आने के लिए कहता है तो पियून दरवाजा खोलकर कहता है, राजा साहब, कोई शारदा मेहरा आपसे मिलना चाहती है। शारदा जी का नाम सुनते ही आस्तिक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो पियून से कहता है, अंदर भेज दो। पियून वहां से चला जाता है और आस्तिक का असिस्टेंट भी वहां से चला जाता है। अब केबिन में सिर्फ आस्तिक ही था और उसे पता था कि शारदा मेहरा यहां पर क्यों आई है। दरवाजा खुलता है और शारदा जी अंदर आते हुए कहती हैं, ये क्या है आस्तिक, आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने कहा ना आपसे कि मैं शेयर्स खरीद लूंगी, तो फिर आपने इंतजार क्यों नहीं किया? आपने कैसे मेरी कंपनी किसी और को दे दी? आस्तिक अपनी रूबीले अंदाज में बैठा था। शारदा जी के इस तरीके से कहने पर उसका चेहरा सख्त हो गया और वो अपना हाथ दिखाकर शारदा जी को रोकता है और कहता है, ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं है, यहां पर मुझसे बात करने का एक तरीका है। शारदा जी वैसे ही गुस्से में आग बबूला थी, लेकिन आस्तिक की बात सुनकर उन्होंने खुद के गुस्से पर काबू किया और एक गहरी सांस लेते हुए आस्तिक को देखकर कहा, राजा साहब, मेरी कंपनी आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? छोटी सी प्रेस से आपका क्या फायदा है? उस प्रेस से हमारी रोजी रोटी है। अगर आप हमसे हमारी रोजी रोटी छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरुणिमा की शादी मैंने आपसे इसी शर्त पर करवाई थी कि आप हमारे प्रेस को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और अब तो आपने मुझे पूरा सड़क पर कर दिया है। आस्तिक ने गुस्से में शारदा जी को देखकर कहा, क्या कहा आपने कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया है? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? मैंने आपसे वादा किया था कि वहां की जमीन में वहां पर काम करने वालों के नाम कर दूंगा, वो मैंने कर दिया है। उस सड़क पर रेस्टोरेंट से लेकर मोची तक के पास अपनी जमीन है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अरुणिमा से शादी करने के बाद मैं आपकी प्रेस को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है, आपकी प्रेस अभी भी सही सलामत वहीं पर खड़ी है। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो प्रेस अब आपकी नहीं है बल्कि किसी और के नाम हो गई है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उस प्रेस के जितने भी शेयर थे वो मेरी पत्नी के नाम थे और उसने वो शेयर्स हंसते हंसते मेरे नाम कर दिए। मुझे वो शेयर्स वैसे भी फालतू में नजर आ रहे थे, उसका कुछ प्रॉफिट तो था नहीं, इसलिए मैंने किसी और को बेच दिया। शारदा जी हैरानी से कहती है, किसी और को बेच दिया? अगर आपको वो शेयर्स फालतू दिख रहे थे तो आप मुझे दे देते, कम से कम उन्हें किसी और को तो नहीं देते। मिश्री की पढ़ाई, घर का खर्चा और मेरी उम्र भी नहीं है ऐसी कि मैं कहीं पर कोई और बिजनेस शुरू कर सकूं। ऐसे में आप वो शेयर्स किसी और को कैसे बेच सकते हैं? मैंने कहा था ना कि मैं वो शेयर्स आपसे खरीद लूंगी। आप कुछ समय इंतजार नहीं कर सकते थे? आप ये क्यों भूल गए कि मैं रिश्ते में आपकी सास लगती हूँ? कम से कम इसी नाते ही सही, उस शेयर्स को मेरे नाम कर सकते थे। शारदा जी के ये कहते ही आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने टेबल के पास चक्कर लगाते हुए कहता है, सासू माँ, रिश्ते का लिहाज तो मुझे बहुत अच्छी तरह से है, इसीलिए तो आप मेरी केबिन में अभी तक खड़ी हैं। मुझसे इस जुबान में बात करने वालों को जमीन के कितने अंदर कढ़ा दिया जाता है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बात रही मिश्री की पढ़ाई की, तो मुझे याद है मिश्री उस स्कूल में पढ़ती है जहाँ का ट्रस्टी मैं हूँ। डोंट वरी, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और आप मेरे पास नौकरी की तलाश में आई हैं, तो मैं बता देता हूँ आपकी ऐसी उम्र नहीं है कि आप यहाँ पर कोई काम कर सकें। लेकिन फिर भी आपकी माली हालत को देखते हुए मेरे पास एक सफाई वाले की ज़रूरत है।